क्या हजारों साल पुरानी किसी किताब में लिखे गए नाम ये साबित कर सकते हैं कि वो कहानी सचमुच घटी थी?
ये तो मतलब ये एक बहुत ही क्लासिक सवाल है।
है ना? जरा सोचिए, कोई एक ऐतिहासिक दस्तावेज पढ़ रहा है और उसमें लिखे शहरों के नाम या रीति रिवाज बिल्कुल उसी काल के हैं जो इतिहास की किताबों में दर्ज है।
मतलब जॉन ब्राइट जैसे प्रसिद्ध विद्वान भी मानते हैं कि जो पैट्रियार्कल काल था,
यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब का समय।
हाँ बिल्कुल, तो उस समय की जो नामकरण पद्धति है जिसे नोमेनक्लेचर कहते हैं, वो बिल्कुल उसी प्राचीन काल से मेल खाती है। कोई एक हजार साल बाद का लेखक अपनी कल्पना से इतने सटीक नाम नहीं गढ़ सकता था।
हाँ, ये एक बेहद मजबूत शुरुआती बिंदु है। मतलब जब सांस्कृतिक विवरण और नाम इतने सटीक होते हैं तो ये साबित होता है कि इन कहानियों की जड़ें उसी प्राचीन काल में गहराई तक धसी हुई हैं।
वो कोई बाद के काल में गढ़ी गई लोक कथा नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन नाम और जगहों की सटीकता जितनी ठोस जमीन देती है ना, मामला तब उतना ही खिसकता हुआ महसूस होता है जब हम उस काल के कालक्रम यानी टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं।
और इसीलिए आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी उलझन को गहराई से समझने वाले हैं। हमारे पास डॉक्टर रॉबर्ट वेनोई के ओल्ड टेस्टमेंट इतिहास पर दिए गए व्याख्यान के नोट्स हैं।
और ये नोट्स काफी काफी दिलचस्प हैं।
बहुत ज्यादा। हमारा मिशन आज ये खोजना है कि कैसे प्राचीन आंकड़े, पुरातत्व विज्ञान और गणित आपस में मिलकर इस कालक्रम की पहेली को सुलझाते हैं। क्योंकि अगर नाम असली हैं तो ये घटनाएं असल में कब घटी थीं?
सही बात है।
तो नोट्स के अनुसार इतिहासकार इसके लिए एक तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, है ना? मैं सही कह रही हूँ?
एकदम सही। आप शुरुआत से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि क्योंकि वहां की तारीखें बहुत धुंधली हैं, इसलिए इतिहासकार भविष्य के एक पक्के बिंदु को पकड़ते हैं
अच्छा,
और फिर वहां से पीछे की तरफ जाते हैं। इस मामले में वो पक्का बिंदु है राजा सोलोमन के शासन का चौथा साल।
जो कि 966 BC माना जाता है ना?
हाँ, ऐतिहासिक और पुरातात्विक सहमति के आधार पर 966 BC माना जाता है, और यहीं से हमारा गणितीय सफर शुरू होता है।
तो हम 966 BC पर खड़े हैं। अब हमें पीछे जाना है। नोट्स बताते हैं कि इसके लिए फर्स्ट किंग्स 6:1 का संदर्भ लिया जाता है,
बिल्कुल,
जिसमें लिखा है कि सोलोमन के शासन का चौथा साल एक्सोडस के 480 साल बाद था, मतलब इजराइलियों के मिस्र से निकलने की घटना।
हाँ, तो इसका गणित लगाइए।
तो अगर हम 966 BC में 480 साल और जोड़ दें तो हम 1446 BC पर पहुंच जाते हैं। तो एक्सोडस की तारीख 1446 BC हुई।
गणित बिल्कुल सही है आपका। इसे एक्सोडस की अर्ली डेट या प्रारंभिक तारीख कहा जाता है। अब इस 1446 BC से हमें और पीछे जाना है।
ठीक है।
एक्सोडस 1240 का रिकॉर्ड बताता है कि इजरायली 430 साल तक मिस्र में रहे।
एक मिनट, मैं इसे साथ साथ जोड़ती चलती हूँ। 1446 में 430 साल और जोड़े तो हम 1876 BC पर पहुंचते हैं।
एकदम सही।
तो ये वो साल होना चाहिए जब याकूब अपने परिवार के साथ मिस्र आया था।
बिल्कुल, और अब उत्पत्ति यानी जेनेसिस की किताब हमें बाकी का गणित देती है। याकूब 130 साल की उम्र में मिस्र आया था।
पापरे, 130 साल?
हाँ, और जब याकूब पैदा हुआ तब उसका पिता इसहाक 60 साल का था।
अच्छा।
और अब्राहम के कनान आने से, जो कि वो 75 वर्ष का था, इसहाक के जन्म तक 25 साल का अंतर है, क्योंकि तब अब्राहम 100 वर्ष का हो गया था।
तो अगर हम इसे जोड़े, अब्राहम के कनान में 25 साल, इसहाक के जन्म के बाद के 60 साल और याकूब के 130 साल, ये कुल मिलाकर 215 साल होते हैं,
बिल्कुल,
जो इन लोगों ने कनान में बिताए।
हाँ,
तो 1876 BC में जब वो मिस्र गए, अगर हम ये 215 साल और जोड़ दे तो 2091 BC निकलता है।
हाँ,
मतलब तब अब्राहम कनान आया था।
हाँ,
और उसमें अब्राहम की 75 साल की उम्र जोड़ दे तो 2166 BC उसके जन्म का साल हो जाता है।
आपने तो पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग बिल्कुल सटीक तरीके से कर ली।
शुक्रिया। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर गणित इतना साफ और सीधा है जैसे हम कोई पुरानी बैंक स्टेटमेंट जोड़ रहे हों, तो फिर विवाद किस बात का है? सब कुछ तो एकदम परफेक्ट लग रहा है।
यहीं पर मामला थोड़ा थोड़ा उलझ जाता है। डॉक्टर विनोय के लेक्चर में शुल्स जैसे विद्वानों का जिक्र है जो इसे आज भी बहस का मुद्दा मानते हैं।
क्यों?
क्योंकि शुल्स जैसे विद्वान बताते हैं कि इन तारीखों को लेकर 21वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 15वीं सदी ईसा पूर्व के बीच भारी अंतर है।
रुकिए रुकिए, 600 साल का अंतर?
हाँ, पूरे 600 साल का।
ये कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? 600 साल तो पूरा का पूरा एक युग होता है यार। ऐसा कैसे हो सकता है कि विद्वान इतने बड़े कालखंड को लेकर एकमत ना हो? क्या हम इन पुराने नंबरों को मतलब आधुनिक स्प्रेडशीट की तरह पढ़ने की गलती कर रहे हैं?
ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और असल में यही इस 600 साल के अंतर की जड़ है।
अच्छा।
हाँ, प्राचीन लोग नंबरों का इस्तेमाल हमेशा वैसे नहीं करते थे जैसे आज का कोई अकाउंटेंट करता है। हमने अभी जो 1446 BC की तारीख निकाली वो अर्ली डेट है।
हाँ।
लेकिन एक दूसरा गुट है जो लेट डेट का समर्थन करता है, जो एक्सोडस को लगभग 1260 BC में मानता है।
तो वो उस 480 साल वाले आंकड़े का क्या करते हैं?
लेट डेट वाले विद्वान उस 480 साल को एक सटीक गणितीय संख्या नहीं मानते। उनका मानना है कि ये एक स्कीमैटिक या प्रतीकात्मक संख्या है।
स्कीमैटिक संख्या मतलब क्या? वे मानते हैं कि प्राचीन लेखकों ने बस कोई मनगणंत नंबर लिख दिया था?
मनगणंत नहीं कहेंगे उसे, बल्कि जानकारी को व्यवस्थित करने का एक तरीका। उनका तर्क है कि 480 साल शायद 12 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, जहां हर पीढ़ी को 40 साल का माना गया है।
ओह।
हाँ, प्राचीन मध्य पूर्व की संस्कृतियों में संख्याएं अक्सर पूर्णता या किसी विशेष अर्थ को दर्शाती थी। 40 साल की संख्या एक पूरी पीढ़ी का प्रतीक थी।
अच्छा, जैसे जजेस की किताब में देखने को मिलता है, वहाँ 40 साल की शांति, 40 साल का संघर्ष या 80 साल का बार बार जिक्र आता है।
बिल्कुल।
तो इसका मतलब ये है कि प्राचीन इतिहासकार ये नहीं कह रहे थे कि ठीक 40 साल बीते, वो बस ये कह रहे थे कि एक पूरा कालखंड बीत गया।
100% की बात। आधुनिक दिमाग सटीकता चाहता है, लेकिन प्राचीन दिमाग अर्थ और व्यवस्था चाहता था।
ये तो सोचने वाली बात है।
और इसके अलावा प्राचीन रिकॉर्ड रखने की प्रणालियां भी हमारे कैलेंडर से बहुत अलग थी।
वो कैसे?
उदाहरण के लिए, मिस्र के इतिहास में कोरीजेंसी यानी सहशासन बहुत आम था। जब एक फिरौन अपने अंतिम वर्षों में होता था तो वो अपने बेटे को सहशासक बना देता था।
तो क्या दोनों के शासन के सालों को अलग अलग गिना गया या ओवरलैप को हटा दिया गया?
यही तो, ये हमेशा स्पष्ट नहीं होता।
और शायद यही कारण है कि ईश्वर ने कभी उस फिरौन का नाम नहीं बताया जिसने अत्याचार किए थे।
हाँ, उसे सिर्फ फिरौन कहा गया है, जो एक उपाधि है, नाम नहीं।
बिल्कुल। अगर रामेसिस जैसा कोई नाम दिया गया होता तो इतिहास के साथ इसे जोड़ना बहुत आसान हो जाता।
एकदम सही। नाम की कमी हमें उस ठोस ऐतिहासिक खंभे से वंचित कर देती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है।
अच्छा, और भी कुछ है?
डॉक्टर वैनोय के नोट्स एक और बहुत बड़े टकराव की ओर इशारा करते हैं, और ये टकराव खुद प्राचीन ग्रंथों के बीच का है।
ओह, आप एक्सोडस 440 के उस प्रसिद्ध टेक्सचुअल विवाद की बात कर रहे हैं ना? जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ये किसी जासूसी कहानी जैसा लगा।
है ना, ये शोधकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी पहेली है।
मतलब हमारे पास एक ही घटना को बताने वाले दो सबसे पुराने दस्तावेज हैं और वे आपस में सहमत ही नहीं है।
हाँ, देखिए, एक तरफ हमारे पास मासोरेटिक टेक्स्ट है जो परंपरागत हिब्रू पाठ है। ये साफ तौर पे कहता है कि इसराइली 430 साल तक मिस्र में रहे।
और दूसरी तरफ
सेप्टुआजेंट है जो ग्रीक अनुवाद है, और वो कहता है कि वो 430 साल कनान और मिस्र दोनों में रहे।
अब जरा इसके गणितीय प्रभाव के बारे में सोचिए। एक मिनट, मुझे इसका हिसाब लगाने दीजिए। हमने पहले देखा था कि पेट्रियार्क लोग केनान में कुल 215 साल रहे थे।
हाँ।
अगर सेप्टुआजेंट सही है और केनान और मिस्र दोनों का कुल समय 430 साल है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वे मिस्र में केवल 215 साल रहे।
बिल्कुल सही।
ये तो मासोरेटिक टेक्स्ट के 430 सालों का ठीक आधा है।
आधा
तो आधी अवधि का गायब हो जाना इतिहास की पूरी टाइमलाइन को हिलाकर रख देता है। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है।
और इसी भारी विवाद को सुलझाने के लिए डॉक्टर वैनोय एक बहुत ही दिलचस्प दिशा में जाते हैं। वे सिर्फ ग्रंथों पर बहस नहीं करते, बल्कि जनसांख्यिकी यानी पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स का सहारा लेते हैं।
ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। उत्पत्ति की किताब में 400 साल के अत्याचार की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन जो बात हैरान करती है वो है जनसंख्या वृद्धि।
हाँ, आंकड़े चौंकाने वाले हैं।
नोट्स बताते हैं कि जब याकूब का परिवार मिस्र गया तो वे सिर्फ 82 लोग थे, लेकिन एक्सोडस के समय वे 20 से 30 लाख की आबादी बन चुके थे।
यही पर गणित इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करता है। क्या मात्र 82 लोगों का समूह केवल 215 वर्षों में 20 लाख से ज्यादा का राष्ट्र बन सकता है?
मुझे तो मुश्किल लगता है।
फ्रांस डेलिट्स नाम के एक विद्वान ने इसका पूरा गणितीय विश्लेषण किया है। अगर हम 10 पीढ़ियां मान लें और हर जोड़े के औसतन 3 बेटे और 3 बेटियां हुईं।
मैं इसकी तुलना चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से करना चाहूंगी।
अच्छा, बताइए।
शुरुआत में पैसा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अगर पर्याप्त समय दिया जाए तो वह एक्सपोनेंशियली बढ़कर एक विशाल रकम बन जाता है। 82 लोगों को 20 लाख बनने के लिए भी इसी कंपाउंडिंग इफेक्ट की जरूरत थी।
ये तुलना काफी अच्छी है, लेकिन लेकिन एक चेतावनी के साथ।
वो क्या?
बैंक में रखा पैसा सुरक्षित रहता है, मानव जनसंख्या के साथ ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में महामारियां, अकाल, शिशु मृत्यु दर और युद्ध जैसी चीजें जनसंख्या वृद्धि को लगातार रोकती थी।
ओह हाँ, मैंने ये तो सोचा ही नहीं।
इसलिए फ्रांस डेलिट्स का निष्कर्ष ये है कि 215 साल में ये वृद्धि गणितीय रूप से लगभग असंभव है, लेकिन 430 साल में?
430 साल में ये मुमकिन है।
हाँ, 430 साल में ये गणित बिल्कुल सही बैठता है।
तो जनसंख्या का गणित साफ तौर पर मासुरेटिक टेक्स्ट का पल्ला भारी करता है और इस तर्क को मजबूत करने के लिए एक भाषाई सबूत भी है ना?
बिल्कुल है। उत्पत्ति 1516 में कहा गया है कि वे चौथी पीढ़ी में वापस लौटेंगे।
हाँ, और यहाँ हिब्रू शब्द डोर यानी डोर का इस्तेमाल हुआ है। आधुनिक समय में हम एक पीढ़ी को 20 या 25 साल का मानते हैं।
सही कहा, लेकिन प्राचीन भाषाओं के विशेषज्ञ बताते हैं कि उस समय डोर का मतलब 25 साल नहीं होता था।
तो क्या होता था?
इसका अर्थ 80 साल या उससे अधिक का एक पूरा जीवन चक्र होता था। तो 4 पीढ़ियों का मतलब 400 साल से ज्यादा का समय हुआ।
अरे वाह, ये तो फिर से 430 साल वाले आंकड़े की पुष्टि कर रहा है।
बिल्कुल,
ये बहुत ही शानदार है कि कैसे भाषा विज्ञान हमारी मदद कर रहा है। लेकिन लंबी पीढ़ियों की इस चर्चा ने मेरे दिमाग में एक और बात डाल दी।
वो क्या?
लेक्चर नोट्स में एक छात्र ने एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा था।
हाँ, मुझे याद आ रहा है।
अगर लोग इतने लंबे समय तक जीते थे तो बुढ़ापे का पैमाना क्या था? छात्र का सवाल था कि सारा अपनी वृद्धावस्था में भी इतनी आकर्षक कैसे थी कि राजा अभिमेलेक उसकी ओर आकर्षित हो गया।
हाँ, आधुनिक नजरिए से तो ये बायोलॉजिकली नामुमकिन लगता है।
बिल्कुल,
लेकिन डॉक्टर वेनॉय का जवाब हमें प्राचीन संदर्भ में ले जाता है। उन्होंने समझाया कि उस समय लोगों का जीवन काल बहुत लंबा होता था। जैसे अब्राहम 175 साल जिया था।
175 साल सोचकर ही अजीब लगता है।
तो जब पूरा जीवन काल इतना लंबा हो तो जीवन के चरण यानी लाइफ स्टेजेस भी आनुपातिक रूप से लंबे होते थे। जिसे हम आज अपनी 70 या 80 साल की औसत उम्र के हिसाब से बुढ़ापा मानते हैं, वो उन लोगों के लिए शायद अधेड़ उम्र रही हो।
ये तो नजरिया ही बदल देता है।
बिल्कुल, शरीर के बुजुर्ग होने की प्रक्रिया खिंची हुई थी।
तो अगर मैं अब तक की चर्चा को समेटूं, जनसंख्या का गणित, लंबे जीवन काल का अनुपात और डोर शब्द का 80 साल का अर्थ, ये सब कुछ मैसुरेरिक टेक्स्ट का समर्थन कर रहे हैं।
हाँ, ऐसा ही लगता है।
ऐसा लगता है कि इजरायली सच में पूरे 430 साल मिस्र में रहे थे। मामला सुलझ गया है ना?
काश काश ये इतना आसान होता।
अब क्या हुआ?
क्योंकि ठीक जब लगता है कि पहेली सुलझ गई है, कहानी में एक नया पेच आ जाता है, एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट।
ओ हाँ, न्यू टेस्टमेंट से गलातियों 3:17।
बिल्कुल, ये सचमुच एक गुत्थी है। इसमें कहा गया है कि कानून यानी लॉ ईश्वर के वादे के 430 साल बाद आया।
कानून तो एक्सोडस के समय दिया गया था ना?
हाँ, मिस्र से बाहर निकलने पर। और वादा यानी कवेनेंट अब्राहम को तब दिया गया था जब वो कनान आया था।
आने से लेकर एक्सोडस तक का कुल समय 450 साल है। इसका साफ मतलब है कि वे मिस्र में केवल 215 साल ही रहे होंगे, क्योंकि कनान के 215 साल तो हमें पहले से पता है।
यही तो समस्या है। न्यू स्कोफील्ड बाइबल के नोट्स भी इसी बात का समर्थन करते हैं।
तो क्या न्यू टेस्टमेंट सेप्टुअजेंट का समर्थन कर रहा है और मासुरेटिक को गलत साबित कर रहा है?
ये एक ऐसा बिंदु है जहां विद्वानों के बीच गहरी बहस होती है। लेकिन जो लोग मिस्र में पूरे 430 साल रहने का समर्थन करते हैं, वे इसका एक बहुत ही ठोस समाधान पेश करते हैं।
अच्छा, वो क्या है?
उनका तर्क है कि वादा सिर्फ अब्राहम के साथ हुई एक बार की घटना नहीं थी। ये कोई ऐसा कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था जिस पर एक दिन हस्ताक्षर हुए और बात खत्म हो गई।
तो अगर ये एक बार की घटना नहीं थी तो क्या वे इसे एक सतत प्रक्रिया मानते हैं?
बिल्कुल, वे इसे एक जीवंत परंपरा के रूप में देखते हैं। हम देखते हैं कि मिस्र जाने से ठीक पहले ईश्वर ने वही वादा याकूब के साथ फिर से दोहराया था, उसका नवीनीकरण किया गया था।
ओह, तो 450 साल की गिनती अब्राहम के बजाय याकूब के मिस्र जाने के समय से शुरू की जा सकती है।
हाँ, क्योंकि वो वादा तब भी उतना ही सक्रिय था।
ये बात सच में दिमाग की बत्ती जलाने वाली है। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्राचीन इतिहासकार समय को किसी एक शुरुआती बिंदु से मापने के बजाय महत्वपूर्ण मील के पत्थरों से मापते थे।
आप एकदम सही दिशा में सोच रही हैं।
मतलब वे समय को रिश्तों के नवीनीकरण और घटनाओं की श्रृंखला के रूप में देखते थे, न कि सिर्फ कैलेंडर के पन्नों के रूप में।
और यही कारण है कि प्राचीन कालक्रम को समझना इतना चुनौतीपूर्ण लेकिन साथ ही इतना रोमांचक है। ये सिर्फ संख्याओं को जोड़ने घटाने का समीकरण नहीं है।
बिल्कुल।
जब आप इसे गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि ये पीढ़ियों, वादों और जनसांख्यिकी का एक बहुत बहुत जटिल जाल है।
ये वाकई में इतिहास को देखने के हमारे पूरे नजरिए को बदल देता है। शुरुआत में मैंने एक पुरानी डायरी की बात की थी जहाँ तारीखें धुंधली लग रही थी।
हाँ।
अब मुझे लगता है कि वो तारीखें धुंधली नहीं है बल्कि वे एक अलग ही भाषा में लिखी गई हैं। एक ऐसी भाषा जो पीढ़ियों की लंबाई और प्रतीकों को हमारी आज की गणितीय सटीकता से ज्यादा अहमियत देती है।
ये इस पूरी पहेली का बहुत ही सुंदर निष्कर्ष है। ये मैं ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम आज दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं।
बहुत ही शानदार विचार। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं चाहूंगी कि सब इस बात पर विचार करें, आज की दुनिया में हम समय को एक सीधी रेखा के रूप में देखते हैं।
एक लीनियर टाइमलाइन।
हाँ, हमारे लिए हर साल हर सेकंड बिल्कुल एक समान होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर प्राचीन सभ्यताओं के लिए समय घटनाओं की गहराई और वादों के प्रभाव से मापा जाता था?
सही बात है।
अगर हमारी आधुनिक दुनिया का गणितीय सटीकता से मापने का ये जुनून असल में हमें प्राचीन कहानियों के असली अर्थ से दूर कर रहा है तो क्या होगा? अगर हमें प्राचीन इतिहास समझना है तो शायद हमें उनका समय अपने समय के चश्मे से देखना बंद करना होगा।
बिल्कुल।
और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अपना इतिहास देखने का नजरिया कितना बदलना पड़ेगा, इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।